श्रीमती फिंक बोली, नहीं नहीं, मेरे पति महोदय ऐसा कभी नहीं कर सकते। इतना सुनते ही श्रीमती कैसिडी बोली, नहीं की क्या मानी, मैं तो इस विचार की हूँ कि हर पत्नी को अपने पति से हफ्ते में एक बार जरूर मार खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि दाम्पत्य प्रेम की कसौटी है यह। मुझे मेरे पति जी ने अभी कल ही पीटा और इस हफ्ते भर उम्मीद है कि वह मुझे अपनी पुतलियों पर उठाए रखेगा। और क्रीम पाउडर स्नों की क्या बात कहूँ, बहुत छोटी चीजें हैं। वो मुझे सिनेमा ले जाएगा और मनपसंद कपड़ों से लाद देगा। तो ये है कहानी एक मिट्टी दो रंग। मित्रों सुनो, कहानी के अंतर्गत आप सुन रहे हैं पहले सीजन की अनुदित कहानियां स्वाति तिवारी के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं, सुनते हैं एक कॉमेडी कहानी। मित्रों भागती दौड़ती जिंदगी में अगर कोई कहानी आपको मुस्कुराने का कारण दे जाए तो क्या आप सुनना नहीं चाहेंगे, क्या मुस्कुराना नहीं चाहेंगे? हमारे अलग अलग सीजन में हम आपके लिए अलग अलग साहित्य से, विश्व साहित्य से और भारतीय साहित्य से चुन चुन कर कहानियाँ लेकर आते हैं। तो आइए हम सुनते हैं विश्व साहित्य से एक अनूठी कहानी। आप इन्हें चलते फिरते, यात्रा करते, किचन में काम करते, कहीं भी कभी भी किसी भी तरह सुन सकते हैं, सुनकर आनंदित हो सकते हैं और जुड़ सकते हैं विश्व साहित्य जगत के साथ। आपके साथ मेरा यह कहानियों का सफर आपको कैसा लगता है, अपना पैगाम जरूर दीजिएगा, अपनी राय अवश्य दें। तो चलिए चलते हैं आज की कथा यात्रा पर। हम सुनेंगे एक मिट्टी दो रंग। यह कहानी अमरीकी लेखक ओ हेनरी की कहानी है। हार्लेम श्रेष्ठी का हिंदी अनुवाद, इसका अनुवाद किया है देवेंद्र बिशुनपुरी ने। अमरीकी लेखक विलियम सिडनी पोर्टर, जो ओ हेनरी के नाम से लिखते रहे हैं। मित्रों उनकी कहानियों में घटनाएं साधारण होकर भी साधारण नहीं होती। कथानक के इस जादूगर की कल्पनाएं तो अद्भुत। सुनते हैं एक गुदगुदाती, हंसाती और अंत में एक विचार छोड़ जाती कहानी एक मिट्टी दो रंग। लेखक हेनरी और अनुवाद किया है देवेंद्र बिशुनपुरिया ने। तो चलिए चलते हैं कहानी के सफर पर। एक ही मकान के ऊपर नीचे की कोठरियों में श्रीमती फिंक और श्रीमती कैसिडी रहती, साथ साथ रहते हैं तो दोनों में दोस्ती हो गई है। एक दिन श्रीमती फिंक जब अपनी सहेली श्रीमती कैसिडी के पास पहुंची तो उस समय वे श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार के बाद गर्व प्रदर्शन करते हुए श्रीमती कैसिडी ने पूछा, क्यों सखी, मैं अच्छी लग रही हूँ ना आज? श्रीमती फिंक ने देखा सहेली की मूंदी आंखों के चारों ओर हरे नीले हल्के हल्के निशान, निचला होंठ फट गया था जहाँ से अभी भी आहिस्ता आहिस्ता खून रिस रहा था और उनके सुराहीदार गर्दन पर भी नाखूनों से नोचे जाने के निशान मौजूद थे। उसी क्षण श्रीमती फिंक बोली, नहीं नहीं नहीं, मेरे पति महोदय ऐसा कभी नहीं कर सकते। इतना सुनते ही श्रीमती कैसिडी बोली, नहीं की क्या मानी, मैं इस विचार की हूँ कि हर पत्नी को अपने पति से हफ्ते में एक बार जरूर मार खानी चाहिए, क्योंकि दाम्पत्य प्रेम की यही कसौटी है। मुझे मेरे पति जेक ने अभी कल ही पीटा है और इस हफ्ते भर तक उम्मीद है कि वह मुझे अपनी पुतलियों पर बिठाए रखेगा। और पाउडर क्रीम स्नो की कौन कहे, बहुत छोटी चीजें हैं। वह मुझे सिनेमा ले जाएगा और मनपसंद कपड़ों से लाद देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, श्रीमती फिंक बोली। मगर मेरे पति मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे, इसलिए कि वे एक बड़े नेक और भले इंसान हैं। सच तो यह है कि तुम्हें मुझसे ईर्ष्या हो रही है, श्रीमती कैसिडी व्यंग सने शब्दों में बोली। असल में तुम्हारा पति बूढ़ा जो ठहरा, उसे अखबार और साहित्य अध्ययन से छुट्टी मिले तब तो प्यार करे। अरे सच्ची बात क्यों छुपाती हो, सच को स्वीकार करो। तुम ठीक कहती हो, लेकिन यह कभी संभव नहीं है कि वह मुझे पीटेंगे, इतना सुनते ही श्रीमती कैसिडी खिलखिला कर हंसने लगी। फिर श्रीमती फिंक को अपने कॉलर के नीचे का उसने गहरा घाव दिखाया जो अभी भरा नहीं था। घाव देखते ही श्रीमती फिंक का चेहरा सफ़ेद हो गया और फिर ईर्ष्या की रेखाएं जाने कहां से उभरने लगी। वह बोली, अच्छा बताओ तुम्हें चोट नहीं लगती क्या इतने मारपीट से? लगती है ना, श्रीमती कैसिडी खुशी बिखेरते हुए बोली, लेकिन जब भी जीक मुझे दोनों हाथों से पिटता है तो इसकी क्या कीमत अदा करता है जानती हो? उसके एक हाथ में होते हैं बहुमूल्य रेशमी कपड़े और दूसरे में मन लुभाने वाले श्रृंगार के सामान, तो कहो कैसी रही कीमत? लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वह तुम्हें पीटता क्यों है, श्रीमती फिंक ने उत्सुकता के साथ पूछा। अरे कैसी पगली हो तुम, तुम्हें यह भी नहीं मालूम? वह बाहर से जब चढ़ाकर आता है तभी ऐसी हरकतें करता है, मगर उसके ऐसा करने का कोई कारण तो होगा ना? इसलिए कि मैं उसकी रखेल हूँ और जब वह खूब पिए होता है तो उस समय हाथ उठाने के लिए मेरे सिवा और कोई दूसरी औरत उसे कहाँ मिलेगी, और मुझे जब भी किसी महत्वपूर्ण चीज़ की ज़रूरत होती है मैं ऐसी वैसी हरकतें कर बैठती हूँ कि वह मुझ पर हाथ उठा दे। यही कल रात भी हुआ, मुझे रेशमी कपड़ों की ज़रूरत थी और आज देखना वह मेरे लिए रेशमी कपड़े लेकर आता ही होगा। चाहो तो शर्त लगा सकती हो, ना हो तो चलो आइसक्रीम की ही बाजी लगा लेते हैं। श्रीमती फिंग थोड़ी देर के लिए विचारों में डूब गई, बाद में फिर उतरे स्वर में बोली, वह मुझे नहीं पीटेगा, इसी कारण ना तो कभी उसने मुझे पीटा और ना ही कभी मैं उसके साथ सिनेमा देखने जा पाई और ना ही वह कहीं मुझे सैर सपाटे के लिए साथ ले गया। जो चीज़ मांगती हूँ वह तुरंत ला कर दे देता है, लेकिन इसमें कोई लुफ्त नहीं, कतई आनंद नहीं। इतना सुनना था कि श्रीमती फिंग की कमर में श्रीमती कैसिडी ने हाथ डाला और ज़ोर से लिपट कर कहने लगी, तुम बड़ी अभागिन हो, जेक सा पति सबके भाग्य में नहीं होता। सभी स्त्रियां अगर ऐसा पति पाने लगी तो उनके विवाह आनंदमय नहीं हो जाएंगे मेरी तरह? हर दुखिया यही चाहती है कि उसका पति उसे मारे, पीटे और फिर इच्छित वस्तुएं दे, जैसे प्यार भरा आलिंगन, चुंबन, चॉकलेट इत्यादि। तभी दरवाज़ा खटखटाहट हुई। दरवाज़ा खुला तो मिस्टर जेक अंदर आए, उनके हाथ में एक सुंदर बंडल था। श्रीमती कैसिडी उन्हें देखते ही आनंद विभोर होकर लिपट गई। हाथ का बंडल मिस्टर जेक ने टेबल पर रखा और फिर कैसिडी को अपने अंक में भरते हुए कहा, ये रहे तुम्हारे सिनेमा के टिकट। ओह श्रीमती फिंग, नमस्ते, कैसी हैं आप? माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं था। हाँ मिस्टर मार्टिन तो अच्छे हैं ना? जी जी मज़े में हैं, श्रीमती फिंक बोली। अब मैं चलती हूँ क्योंकि मार्टिन के लंच का समय हो रहा है। और दरवाजे तक विदा देने आई मिसेस कैसिडी ने उन्हें फिर से कहा, मैं तुम्हारे उपाय को कल काम में लाकर देखती हूँ। और श्रीमती फिंक जब अपने कमरे में पहुँची तो उनका कलेजा बिना किसी कारण के फटा जा रहा था। सच तो यह है कि औरत जाति को आंसू बहाने के लिए कोई ख़ास कारण ढूंढने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती, कारण अपने आप होते हैं। वह सोचने लगी, मेरा मार्टिन कैसिडी के पति मिस्टर जेक से किसी भी चीज़ में उन्नीस नहीं है। वह भले ही मुझे नहीं पीटता मगर मेरी चिंता तो उनसे ज़्यादा करता है। वह कभी नहीं लड़ता, घर पहुँचा चुपचाप खाना खा लेता है और जुट जाता है अध्ययन में। हालांकि वह नेक इंसान है मगर उसे कहाँ मालूम कि पत्नी किस चीज़ की भूखी है। और वह डूब गई अपनी और मिसेस कैसिडी की बातचीत की श्रृंखला में। मिस्टर मार्टिन ठीक 7 बजे आए। श्रीमती फिंग खाना परोस कर लाई और पूछने लगी, अच्छा बताओ खाना कैसा बना? मिस्टर मार्टिन हंसने लगे और खाना खाकर अपने अध्ययन कक्ष में चले गए। दूसरा दिन इतवार था। श्रीमती फिंक सुबह ही अपनी सहेली श्रीमती कैसिडी के पास जा पहुंची। श्रीमती केसरी रेशमी कपड़ों में सजी धजी 16 वर्षीय बालिका के समान दिखाई दे रही थी। खुशी से आंखें चमक रही थी और मुस्कान होठों पर खेल रही थी। दंपति इतवार के दिन का कोई अच्छा सा प्रोग्राम बना रहे थे। श्रीमती फिंक के मन में उन्हें देखते ही ईर्ष्या की एक तेज लहर मचल उठी। वो वापस अपने कमरे में लौट आई और फुसफुसाने लगी, कितने सुखी हैं ये दोनों, कैसा आनंदमयी दाम्पत्य प्रेम है। ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो सुख का कोई बड़ा खजाना केसीडी के पास आ गया है। इसके मानी क्या हुए, यही ना कि अन्य पति भी अपनी पत्नी की मरम्मत में कसर नहीं रखें, और ऐसा हर परिवार अगर करे तो आनंद का सागर नहीं बह उठेगा उनके परिवारों में। ठीक है, आज मैं इसको देखती हूँ। हफ्ते भर का कपड़ा बाल्टी में साफ करने के लिए रखा हुआ था। मार्टिन बेचारा अपना अध्ययन कक्ष में साहित्य पढ़ने में लीन थे। उन्हें देख श्रीमती फिंक ने अपने आप से कहा, मुझे अगर वह नहीं पिटेगा तो मैं ज़रूर कोई ऐसी तरकीब करूँगी कि आज तो उसे बाध्य होकर मुझ पर अपना पुरुषार्थ लादना पड़ेगा। और मिस्टर मार्टिन थे कि रसोई घर से आने वाली मीठी मीठी पकवानों की सुगंध का मज़ा लेते हुए साहित्य संसार में डूबे हुए थे। पत्नी को पीटने की कल्पना तो दूर दूर तक कभी उन्होंने स्वप्न में भी नहीं देखी थी। और तभी ऊपरी मंजिल से श्रीमती केसीडी के हंसने की तेज आवाज़ आई। श्रीमती फिंक को लगा श्रीमती केसीडी उन पर व्यंग करते हुए हंस रही है। श्रीमती फिंक कपड़े धोने की तैयारी कर रही थी। इस विचार के उठते ही श्रीमती फिंक आपे से बाहर हो गई और अपने पति के कमरे में जा पहुंची। बोली, अरे मैं कोई धोबन हूँ जो इन सारे कपड़ों को अकेले मैं ही धोऊं? एक मैं ही हूँ कपड़ा पीटते पीटते परेशान हो जा रही हूँ, और एक तुम हो बेफिक्रे बैठे सिगरेट फूंकते रहते हो काहिल कहीं के। तुम इंसान हो या हैवान? पत्नी द्वारा अचानक किए गए इन तीव्र प्रहारों से मार्टिन को बड़ा अचंभा हुआ। हाथ के अखबार को तह करते हुए एक और सरका दिया और चुपचाप पत्नी की ओर देखने लगा। उन्हें यूँ चुप्पी साधे देख श्रीमती फिंक मन ही मन सोचने लगी कि क्या इतने तीखे व्यंग को भी यह पी जाएगा, चुपचाप पी जाएगा? क्या पीटे जाने के लिए यह कदम काफ़ी नहीं था? मार्टिन जब इतने पर भी एक बुद्ध की तरह बैठा रहा तो श्रीमती फिंक ने उन्हें एक जोरदार घूंसा जमा दिया। मार्टिन के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, वह तत्क्षण खड़े हो गए। श्रीमती फिंक ने आओ देखा न ताओ और धर दबाई पति की गर्दन। फिर मार खाने की आशा में उसने अपनी आंखें बंद कर ली कि अब मारेगा, अब मारेगा। उस समय ऊपर की मंजिल पर श्रीमती केसीडी श्रृंगार में लगी हुई थी। उन्होंने सुना कि नीचे कोई झगड़ा हो रहा है। जेक आश्चर्यचकित होकर बोले, मार्टिन और उसकी पत्नी? मार्टिन और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा? उनके बीच तो कभी झगड़ा नहीं हुआ। चलो मैं नीचे जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ। श्रीमती केसीडी की आंखों में एक तेज चमक जाग उठी। वो बोली, ठहरो ठहरो, मैं खुद देखकर आती हूँ, आकर बताती हूँ। श्रीमती केसीडी दौड़ते हुए जीने उतरने लगी और श्रीमती फिंक की तरफ दौड़ी। श्रीमती फिंक उन्हें देखते ही उनसे लिपट गई। मार्टिन ने पीटा ना, श्रीमती केसीडी ने जैसे प्रसन्नता जाहिर करते हुए पूछा। श्रीमती फिंक चुप। जोर जोर से रोने की इच्छा उनके अंदर जाग रही थी और सचमुच वे फूट फूट कर रोने लगी। श्रीमती फिंक के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए श्रीमती केसीडी ने पूछा, अरे बोलती क्यों नहीं, बताओ ना कितना पीटा उन्होंने तुम्हें, पीटा ना? फिर स्वयं उनके शरीर को गौर से देखा, कहीं भी मार का कोई निशान नहीं। श्रीमती फिंक की आंखों में लगातार आंसू बहे जा रहे थे। झड़ी लगी हुई थी वहाँ आंसुओं की, जो बंद ही नहीं हो पा रही थी, और चेहरा एकदम सफ़ेद, जैसे किसी ने खून ही निचोड़ लिया हो। बाद में श्रीमती फिंक श्रीमती केसीडी के कंधों पर सर रखकर जोर जोर से हिचकियाँ लेते हुए कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, आज दरवाज़ा मत खोलो, मत खोलो दरवाज़ा, तुम्हें मेरी कसम, और किसी ने देख लिया तो, और किसी से मत कहना यह सब कि मार्टिन ने मुझे नहीं मारा। उल्टे वहाँ नल पर जाकर हफ्ते भर के कपड़े धो रहा है, मारने के बजाय कपड़े धो रहा है। तो ये थी आज की कहानी, एक मिट्टी दो रंग। मित्रों, कहानी आपको कैसी लगी? ओ हेनरी की कहानियाँ विश्व साहित्य की चुनी हुई कहानियों में शामिल है। हमने पिछले हफ्ते भी ओ हेनरी की कहानी द लास्ट लीफ पढ़ी थी और आपके द्वारा बहुत पसंद भी की गई थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय से ज़रूर अवगत